चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकिशोरे भोयं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनोकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि त्वया विना इति विज्ञाय राधे माम्। कल हमने बतलाया भरत जी सब माताओं वशिष्ठ जी और वहां के समस्त चतुरंगिणी सेना को लेकर चित्रकूट में पधारे। वहां पर पधारे तक किस रूप में बैठने, जब उन्होंने सुना श्रृंगेरपुर में रामचंद्र जी जटा पहने हैं, जटा और केस को बांध रखे हैं, खड़ाऊ और कुछ भी पैरों में नहीं है, वनवासियों का वेश है, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, उनका सेवक हूं, वो राजा बन करके चले हाथी घोड़ों पर और राजकीय वेशभूषा में हो, ये ठीक नहीं उचित। उन्होंने वो सब छोड़ दिया, केस पर जटा बना ली और वनवासी जैसे वस्त्र है वो धारण किए, अब पैदल ही चल करके चित्रकूट में आए। जब चित्रकूट में आए मंदाकिनी के तट पर, तो वहां पर देखा जी रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहीं पर स्नान करते हैं, वो वहीं पर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ पर वनवासियों के साथ में यहीं पर बैठते हैं, वहां पर वो ऐसे रो रो करके वहीं पर लौटने लगे और फिर रामचंद्र जी के पास में गए तो एकदम प्रेम में अधीर होकर के वहां पर रोने लग गए। लक्ष्मण जी ने उसके पहले सुना कि वो तो चतुरंगिणी सेना के साथ में आ रहा है, पर ताल के या किसी पेड़ के ऊपर में चढ़ गए और देखा जी भरत सब चतुरंगिणी सेना के साथ में आ रहा है, घोड़े हाथी सवार सब है, इसकी क्या जरूरत थी, जरूर राम से युद्ध करके मारने के लिए आ रहा है। पर दौड़ करके राम से बोले जी मैं आज भरत को एकदम मार करके रहूंगा, कोई उसका एक भी सैनिक बच नहीं रहेगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज जरूर मरना है। बोले जी भावावेश में काम मत करो, पीछे पछताना हो, उसको आने दो, देखो जी क्या करता है। जब वो आए और उनके चरणों में गिर करके रोने लगे तो इनका संदेह दूर हो गया, तो भरत जी के चरणों में गिरे, बोले जी हमारा अपराध क्षमा कर, मेरी भावना बहुत अशुद्ध थी, मैं आपको मारना चाहता, तुम मारा क्यों नहीं, तो काम ही बन जाता। फिर मिले, माताएं आई उनसे मिले, सीता जी मिली, और इसके बाद में उस दिन तो विश्राम हुआ, राम ने उनको विश्राम कराया, उनसे कुशल प्रश्न पूछा, अयोध्या का कुशल है, सब कुछ ठीक है, तो अयोध्या का कुशल जहां आप नहीं हैं वहां पर कुशल क्या हो सकता है। पिताजी हाराम हाराम और हा कह करके इस लोक से चले गए। मैं कैकई के गर्भ से क्यों जन्म लिया मैं, और जन्मते ही मर क्यों नहीं गया, या वही क्यों नहीं मर गई, उसको दोष देने लगे। राम ने कहा मेरा शपथ है मैया के कई की निंदा मत करना, उनके प्रति शुद्ध भावना रखना। एक बात याद रखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार। यदि कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसे देश मत करो, उसे अपनी कमियां मालूम हो जाएंगी, इसलिए निकट में रखो जो हमारी कमियों को हमसे दोषों को त्रुटियों को सूचित करता रहेगा, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में उसे व्यवहार करो और वो करता रहे। जैसे राम महाप्रभु जी रामचंद्र पुरी का व्यवहार, अन्यथा ईर्ष्या देश से भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे दूसरों के उद्वेग हो और फिर अपना उद्वेग मत करो। किंतु मैं बहुत समझाने पर भी लोग नहीं समझते हैं, ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे दूसरे को उद्वेग, प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना चाहिए, इसलिए उद्वेग मत करो नहीं तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये होता है किस लिए, होता है किस लिए, कारण इसका है, जब हो की इच्छा रहेगी और दूसरे कुछ कहेंगे बस क्रोध हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, लोगों से मधुर व्यवहार नहीं रख सकते। इसलिए ये सब शास्त्रों की बातों को मान करके खूब गंभीर रूप से चल करके विचार, खूब गंभीर, विशेष करके गुरु की बात को ऐसे तैसे उड़ा मत देना। इस विषय में आप कुछ नहीं जानते हैं, हम अनुभवी मत कहो, बिना विचार किए हुए मत नष्ट करके बात को, यदि भजन करने की लालसा है कभी मत। किंतु आजकल ही काल जो सब कुछ विपरीत चल रहा, तुम लोग सावधान रहो भाई, जब दूसरा कोई हमारा अपकार करता है तो भी तुम उसको अपकार मत करो, इस तरह से चलो। अंत में दूसरे दिन रामचंद्र जी ने पिताजी के लिए सुन करके, जब हमारे पिताजी पर लोग सिद्धाए और उनको जल प्रदान किया, और इमली होती है इमली का बीज, उसको पीस करके पत्थरों को पत्थर दे करके और उसका पिंड बनाया और उसको दिया। मैया विलाप करने लगी कौशल्या, आज जो समस्त पृथ्वी के अधीश्वर थे महाराज दशरथ, उनका सबसे समर्थ बेटा राम, आज अपने पिता को पिंड देने के लिए इमली दे रहा है, मैं क्यों देख रही इसे, मर क्यों नहीं जा, विलाप करने लगी। सबने समझाया, ये सब वर्णन किया गया है वाल्मीकि रामायण में, या तुलसी बड़ा हृदय तुलसीदास जी ने तो कुछ समझ करके मर्यादा पूर्वक किया, वाल्मीकि रामायण में एकदम ऐसा किया है जैसे वो साधारण से साधारण व्यक्ति हैं और साधारण के भाव हृदय को स्पर्श किया ऐसा। फिर राम ने कहा, उनसे पूछा, भैया हमारी जैसे बलकल बसन पहन करके सिर पर जटा रख करके खाली पैर पत्थर नोकीले और सब उसमें ऐसे चल करके आए, क्यों आए, आने का तात्पर्य क्या है, तुम अयोध्या लौट जाओ और वहां का कार्य संभालो, पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है और मैया ने इसका अनुमोदन किया, मैया ने दिया है, दोनों ने मिलकर, इसलिए हम दोनों मिलकर के पिताजी की बात को सत्य रखें, जो सत्य के लिए मर गए अप्रकट हो गए उनके लिए तुम्हारा और हमारा यही कर्तव्य है, दोनों भाई मिलकर पिताजी देखें स्वर्ग लोक से कि हम दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा को उनकी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है, इसलिए चिंता मत करो। भरत जी समझ करके नहीं समझ रहे, उन्होंने कहा कुल का बड़ा भाई ही, कुल का बड़ा बेटा ही पिता का बड़ा बेटा राज्य का बेटा। ऐसे हमारी एक छोट इच्छा कुकुल की रीति चली आई है, इसका मिटाना बहुत ही दुखदायी है, इसे धर्म की हानि होगी। इस प्रकार से दोनों में बात विवाद चलता है। एक फुटबॉल को अपने पैर से ठुकराता है, वो फिर उधर से मारता है गेंद की भांति, किसको? यह राज्य और प्रतिष्ठा सब। भजन करने की लालसा है तो ऐसा ही करना सीखो, ऐसा करना सीखो, धन प्रतिष्ठा और सबको लाश से मार करके उसे दूर करो। भगवान की भक्ति में यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमारे गोस्वामियों ने करंगा और कौथिन लेकर के जो भजन किया यही सबसे, नहीं तो अभिमान आ जाता है, अभिमान आता है, घर बार छोड़ करके भी उसमें आसक्ति आ जाती है। इसलिए भजन के तरीकों को सीखना चाहिए। गोपियां जब वन में आई, कृष्ण चले गए, तो उद्धव क्यारी में जो थी कैसे थी? दिरे में न खाती हैं, न पीती हैं, न साड़ी धुलाती हैं, ये कृष्ण संबंधी धूल और कृष्ण संबंधी आंसू से ही लालच धुआवत न साड़ी। कैसा दिरा? तो हम लोग यदि कृष्ण के दिरा में सचमुच घर बार छोड़ करके आए हैं, खाना पीना सुहाता सुहाएगा किसको? जो नहीं छोड़ा है वो, जो घर बार छोड़ करके आया कृष्ण के लिए मिल उनके साधन भजन करने के लिए, तो दिरा की उपलब्धि होनी चाहिए। फिर उसका ये सब भोगों की को वो संग्रह क्यों करेगा? आप लोग भी भोगाश का संग्रह छोड़ करके भगवान का भजन। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ठीक कह रहे हैं, रामचंद्र जी आप अयोध्या लौट सकते, कुल परंपरा की रक्षा करें, किंतु रामचंद्र जी सुने नहीं। भरत जी ने कहा, अब मैं अनशन करूंगा और यहीं पर अपना प्राण त्याग करूंगा यदि आप नहीं चले। सभी माताएं चाहती हैं और सारी प्रजा चाहती है, सारा अयोध्यापुर की पुर की निवासियां ये सभी लोग चाहते हैं, स्त्री पुर सारे सब लोग चाहते हैं, और आप नहीं चल रहे हैं, इसलिए मैं अनशन पर बैठ गया। और वो अनशन पर बैठे, भरत जी ने कहा जी आशा मत करो, रामचंद्र जी ने और जितने ऋषि मुनि लोग समझा गए ऐसा मत करो। इतने में सुना जो महाराज जनक विदेहराज आ रहे हैं, जब उन्होंने सुना राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए हैं और इस समय में वो चित्रकूट में हैं और भरत ननिहाल से आ करके और उनको मनाने के लिए गया है, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। ये भरत कैसा जो आए हुए राज्य को भी ठुकरा सकता है, और हम ऐसा जानबूझ करके राज्य को ठुकरा रहे हैं, प्रेम से पागल हो गए विदेह, उनका भूल गया विदेह भाव, और उन्होंने भी वहां पर अपनी व्यवस्था करके चतरंगिणी सेना और सुनैना अपनी पत्नी को और सब लोगों को लेकर के वो भी चल गए। कुछ किरात लोगों ने संवाद दिया, महर्षि वशिष्ठ जी महाराज जनक पधार रहे, बड़ी खुश हो, बहुत खुश, बहुत खुश। आज रकुल की नैया डगमगा रही थी अगाध समुद्र में, कोई खेने वाला बचाने वाला नहीं था, अब नौका बच सकती, नहीं तो ये दोनों बड़े बहुत अच्छी बात है, अपने आप और शत्रु राम लक्ष्मण भरत शत्रु सभी आगे बढ़कर के उनको स्वागत किया और ले आए पर्णभूमि तक, उनका सम्मान आतिथ्य किया। अब फिर उस दिन तो खाना पीना भी नहीं हुआ, सारा दिन शोक में और ऐसे बातों में बीत गया। दूसरे दिन सब लोगों ने स्नान किया और उसमें वशिष्ठ जी ने भरत एक सभा बुलाई। उसके पहले क्या हुआ, भरत जी मैया कौशल्या के पास में गए, भैया एक बात पर, राम तुम्हारी आदेश को कभी उल्लंघन नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं, हमारी ऐसी धारणा। हाँ बेटा, वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, तो एक बात कर, तो राम से कहो अयोध्या लौट जाओ, जरूर उनको तुम्हारा आदेश पालन करेगा और करेगा। तो वो कुछ चुप होकर के बोली, बेटा मैं कैसे ये कहूं, हमारे गर्भ से निकला है और तुम ही मेरे संतान हो, वो भी संतान है, क्या वो अधर्म की बातें कर रहा है? पिताजी के आदेश को पालन करना ये क्या अधर्म है जो मैं इसे कह दूं? तो मैं क्या धर्म की बात करता हूं? बड़ा भाई वो राज्य का अधिकारी होता है और राज्य छोड़कर क्या है, मैं कह रहा हूं जिसे उनको लौटा लिया। सारी अयोध्यापुरी चाहती है, सारे लोग चाहते हैं, और मैं क्या अन्याय कर? तो नहीं बेटा, तुम भी ठीक कर रहे, तुम भी धर्म के पथ पर हो, किंतु वो भी तो अन्याय नहीं कर रहा, पिता के आदेश से, पिता के आदेश है, तो तू तो मैया है, तू मैया होकर के कहो, अपनी तरफ से कहो, बात तो ठीक है, किंतु उसमें मैया और पिता दोनों है ना, मैं अकेली हूं, इसलिए वशिष्ठ महाराज के पास में गए। गुरुजी, अब अयोध्या की पतवार तुम्हारे हाथ में है, पिताजी चले गए, अब कोई नहीं है, इसलिए आप कृपा करके राम को आदेश दीजिए, वो लौट जाए। बात तो ठीक रहे हो, तुम्हारा प्रेम असीम है और उसका धर्म, उसकी धर्म निष्ठा भी असीम है, वो धर्म की सीमा और तुम ममता और स्नेह की सीमा हो, प्रेम की सीमा हो, मैं कैसे कहूं? ये राम तुम अपना धर्म छोड़ दो, जब मैं अधर्म कह रहा हूं, नहीं तुम अधर्म नहीं, तुम प्रेम में डूबे हुए हो, प्रेम में कोई रीति नहीं होती, इसलिए मैं ऐसा नहीं जो राम अधर्म करे। बहुत समझाया, बस ने अच्छा एक बात करो, राम लक्ष्मण को लौटा दो, मैं कह दूंगा लौट जाएंगे के लिए, और शत्रुघ्न और भरत तुम दोनों वन में चला जाना। और बड़े आनंद हो गए, बड़े आनंद से डोलने लगे, आज गुरुजी हमारे जीवन कृतार्थ हो गया, यदि ऐसी बात हो। फिर बोले जी एक और भी संभावना है, वो संभावना क्या, जो तुम्हारा राम के प्रति इतना भाव है, अनुराग है, तो लक्ष्मण लौट जाए और तुम उनके साथ में रहो, ये तो और भी अच्छी बात है, कौशल्या अनुमोदन के जहां ये बात अच्छी है, ऐसा ही हो कि तो कोई है सोई जो राम अर्जुन कोई है तो सोई जो राम और रचि राखा, होना तो वही है। बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद में राम के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, या तो आप दोनों लौट जाइए सीता जी के साथ, सीता जी राम लक्ष्मण, और उसके बदले में भरत और शत्रुघ्न बन जाए। राम ने कहा जैसे महाराज दशरथ का ऐसा आदेश है कि नहीं, जरा देखो उन्होंने क्या कहा, भरत का राज्य और राम का देश, इसमें उनके पिताजी की सहमति है, ऐसा तो करना ठीक नहीं। अच्छा तो ऐसा हो लक्ष्मण जी लौट जाए, मैं लक्ष्मण जी के बदले में मैं जाऊं, तो फिर राज्य कौन कर देखेगा? पिताजी ने तो तुमको राजा बनाया है ना, मैं तुमको राजगद्दी से उतार कैसे दूं? बड़ी देवता लोग, ऋषि लोग तुम दोनों का संवाद सुन करके विफल हो रहे हैं, ऐसा तो कभी होता नहीं, इतना अगाध राज्य, दुर्लभ राज्य, और राम लेना नहीं चाहते, भरत नहीं लेना चाहते, दूसरों को राज्य देना चाहते, अद्भुत सुनकर के ऐसा ही संवाद होता रहे और हम लोग सुनते रहे, अद्भुत अद्भुत शास्त्र की बातें। फिर इतने में जब जनक जी पधारे तो भरत जी रात में सुनैना जी के पास में गए। बोले जी मैया, सीता जी का तो दुख देख रही, कितनी सुकोमल चरणों वाली है, आज बनबन भटक रही है, कपड़े लत्ते बनवासी धारण कर रही है, तो तुम उसको ऐसा देखना चाहती हो कि राज रानी के रूप में देखना चाहती? बेटा मैं चाहती तो हूं राज रानी के रूप में देख, किंतु क्या, पति का आदेश तो पालन करना पड़ेगा, आदेश नहीं, पति के प्रति जो धर्म स्त्री का है। आज हमारा हृदय गर्व से उन्नत हो रहा है, हमारा और हमारे पति का। इस समय सीता जी ने हमारा सम्मान जगत में रख दिया, ऐसा आदर्श नारी का रखा जो विश्व में कहीं नहीं मिलता। आज अपने पति की सेवा के लिए अयोध्यापुरी, जनकपुरी, सारा वैभव सब कुछ छोड़ करके उनके साथ, मैं उसे कैसे कहूं? बहुत समय तभी महाराज जनक से कहना, ये सीता का तो ख्याल रखो। फिर दूसरे दिन वशिष्ठ जी ने बुलाया, बड़ी भारी सभा बुलाई। उस सभा में ऋषि महर्षि मुनि लोग एक तरफ बैठे, अयोध्यापुर निवासी माताएं सब, भरत शत्रुघ्न एक तरफ में रामचंद्र और जग वो ऋषि मुनि थे, बीच में वशिष्ठ जी और महाराज जनक बैठे। बोले महाराज जनक, आप ज्ञान की सीमा है, आज रघुकुल की नौका समुद्र में डूबने जा रही, पतवार कोई नहीं है, महाराज दशरथ चले गए और मैं भरत के प्रेम में ऐसा डूब गया कि मुझे मोह हो गया, अब इसका पक्ष लेना पड़ता है मोह के कारण, इसलिए मैं अब विचारक नहीं रह गया, जजमेंट करने लायक नहीं रह गया, आप निर्पेक्ष हैं। वशिष्ठ जी करें, मैं अभी सत्य सत्य निर्णय नहीं कर सकता, क्यों? भरत ने अपनी सेवा से, अपने व्यवहार से, भाव से हमें एकदम मुक्त कर करके अपने वशीभूत कर रखा है, इसलिए मैं यदि कहूंगा तो यही कहूंगा जरा लौट जाओ, और नहीं कर सकता, इसलिए मैं सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर सकता, किंतु आप विदेह हैं, ज्ञान की सीमा है, आप निर्णय दे सकते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है, अनुरोध है कि आज दोनों की नौका, गोकुल की नौका को स्थिर कर दीजिए, और जैसा उचित है, मैं जानता हूं कि राम आपके आदेश को नहीं उल्लंघन कर सकता, और भरत भी आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। महाराज जनक ने राम की तरफ में देखा, वो उठ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोले, आप मेरे पिता भी हैं, ससुर भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, हमें ज्ञान देने वाले आप, भूत भविष्यत वर्तमान को भी जानने वाले आप हैं, ब्रह्म तत्व का आपको ज्ञान है, भरत का क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप जैसा निर्णय देंगे मैं अपने सिर माथे पर रख करके जरूर पालूंगा, यदि कहेंगे अयोध्या के लिए अभी लौट जाऊंगा, जो कुछ भी आदेश है, ये है शिष्य का कर्तव्य, ऐसा शिष्य का कर्तव्य है, ऐसा शिष्य नहीं हुआ तो वो कुशिष्य है, तरह से कहना चाहिए शिष्य को। तो आज के शिष्य कैसे हैं? महाकलिजुगी, और गुरु भी वैसे हैं, गुरु ऐसा मिल जाए तो शिष्य नहीं मिलते, और शिष्य भी कोई के मिले गुरु कम मिलते हैं, शिष्य मिले लाख लाख, गुरु मिले को, तो ये सब बातें हैं जो गुरु की बात को मानने वाला बिना हुज्ज के, हुज्ज माने क्या, हीला वाला क्या, ना नूनू नचू, किंतु परंतु लेकिन बट, ये न करने वाला हो, तो बातों को यदि समझ में नहीं आए तो उनसे पूछ ले, ये आपने आदेश दिया मेरी समझ में नहीं आया, किंतु इसको पालन करने जा रहा हूं, किंतु मुझको समझ करके तो करना है, तो उनसे पूछ ले। किंतु आदेश के विरुद्ध कोई अपील मत करे, अपील नहीं तो शिष्य से पद से खारिज हो जाएगा। आज गुरु हाथ जोड़ करके शिष्य के सामने खड़े करते हैं, हो करके कह रहे हैं, अनुरोध करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और शिष्य कैसा कठोर पहाड़ जैसा बात अपनी बात से तल से मश नहीं होता, ये भजन है। ये सब बातें समझ करके भजन करो, ऐसे बनने की चेष्टा करो। ऐसा मत समझो जो कलयुग में गुरु ही नहीं है, है
जरूर है,
नहीं तो ये पृथ्वी कैसे रहेगी। अब उनकी बात सुन करके या फिर निर्णय देने में समर्थ है, वो अपने गुरु जी को प्रणाम किया। उनके गुरु कौन है? शंकर जी। शंकर जी को महिमा है। यदि कोई बात समझ में न आए तो गुरु को स्मरण करो। ऐसी परिस्थितियों में हमारे गुरु जी ने क्या किया ये भी समझो, और उनसे शक्ति के लिए मांगो ये हमारे लिए क्या करनी है। ऐसे मत समझे गुरु जी मर गए हैं और कोई प्रेरणा नहीं देंगे, ऐसे लोग वैष्णव ही नहीं है, इस चीज को समझो। फिर प्रणाम किया, हाँ कि जैसे हमारे गुरु जी जो प्रेरणा देंगे वही कहेंगे। फिर सोच करके प्रणाम करके गुरु को और ऋषि महर्षियों को क्या होता है हमको याद नहीं, हमारा भाव अपना तो लीजिए बोल दीजिए, हमारा हो गया, जल्दी करो बिना प्रणाम के, यही तो गड़बड़ हो जाता है, भाव टूट जाता है। अब अंग्रेजी में ही बोले, एक ही भाषा है, अंग्रेजी में भाव न
Yesterday Gurudev has already told Bharat has reached at Chitrakoot and there he is begging for Ram should come back to Ayodhya. When Bharat was coming and Lakshman saw that he is coming with army, he thought that probably Bharat is coming to fight or to kill Ram. He became angry. He went to Ram and said that I will kill Bharat. And Ram said, wait, let's see. What is the mood of Bharat? Let him come. But Bharat came. And he paid his obeisances at the lotus feet of Ram. Lakshman found that he was such a big mistaken. And he begged for his forgiveness. Oh, I was thinking that you were coming with some wrong intention. There was a big discussion between Ram and Bharat. Both were strong towards their idea. Ram was saying that I cannot go back because I have to follow the order of my father. And Bharat was saying that you should come back because mother and everyone wants that you should come. In our dynasty, this is the procedure. This is the tradition that elder brother becomes king. And you are the eldest one, so you have to become king. You cannot trespass this tradition. There was so many discussions. Then Bharat said, if you will not come, then I will go on anshan, what you call anshan, fasting till death. And he took anshan. Meanwhile, there were some proposals also. Okay, instead of Lakshman, Lakshman should go back, I will go with you. Then Ram said, no, this can't be possible because father has given order that you should become king. And finally, when so many things were taking place at that time, there was a news that King Janak is also coming. King Janak, father of Sita ji, he is called Videhi. He is above this bodily concept, totally absorbed in constitutional knowledge. And he was coming. Why? Because he came to know that Ram, he has given up the kingdom and his brother is not ready to accept it. Look, such a vast and big kingdom for which so many fights take place, and these both brothers are ready to give it up for each other. What a great love for each other. What great personalities. His heart was overwhelmed with love for Ram and Bharat. He was moved, and his gyan, knowledge, it remained untouched, and he came there with his wife and all the army also. When Janak came, at that time, Vishishtiji, he said, oh, King Janak, I want to request you one thing, that I have become biased towards Bharat. I am seeing such a pure love of Bharat. He is such a humble attitude and his behavior. I am so much inclined towards him. Because of my biased heart, I cannot do the right judgment. You are above all these biasedness and partiality. So I want that you should give judgment. You should give the truth. What should be done? Lord Ram will also accept it and Bharat will also accept it. Another day there was a big assembly. At one side, Ram and others were sitting. At one side, Bharat and the whole Ayodhya was sitting. In the middle, Janak and Vishishti, they were sitting. And Ram said to Janak, yes, I accept it. You are my father-in-law, you are my father, and Guru also. Beyond that, you are omniscient and you know past and future. So whatever decision you will take, I will accept it. At the same time, Bharat also said, I will accept it.
जब दोनों के तरफ से स्वीकृति मिल गई तो महाराज जी ने अपने गुरु को प्रणाम करके और निर्णय देना आरंभ किया। निर्णय क्या दिया? निर्णय दिया, हमने विचार करके देखा और हमारे हृदय में ऐसी प्रेरणा आई, भारत की जीत है, भारत की जीत है। जहां भारत प्रेम और ममता की सीमा है, वो नीति अनीति दुर्नीति सुनीति नहीं देखता, वो सबको डुबा देता है। तो भरत का प्रेम अथाह अनंत महासागर के समान है। और उधर में राम, धर्म और मर्यादा की सीमा है, वो हिमालय पहाड़ है, डूब जाएगा प्रशांत सागर में, किंतु टस से मस नहीं होगा, नहीं होगा। तब एक बात है, भरत की जीत हुई, किंतु प्रेम की भी कोई परिभाषा और नीति है, वो क्या? खूब ध्यान से सुनो, वो है प्रेम की रीति जो अपने आराध्य या इष्ट वस्तु के इष्ट के भावों को जान करके उनकी इच्छा का अनुसरण करता है, अपनी भावों की जलांजलि देकर और उनका जो इष्ट है वो इष्ट के अनुसरण करेगा, उसे पूछेगा जी आप क्या चाहते हैं, या हृदय की भावना को जान करके उनके मनोभीष्ट को बोल, ये प्रेम की नीति। ऐसा नहीं कि उनके विरुद्ध कर देगा। तो जब उन्होंने कहा जी भरत की युद्ध हुई तो अयोध्या पुरवासी सभी बड़े प्रसन्न हो गए, या मैया प्रसन्न हो गई, महाराज वशिष्ठ जी भी प्रसन्न हो गए, अब तो राम को लौटना पड़ेगा। किंतु जब उन्होंने ये कहा कि प्रेम की भी कोई रीति नीति है, तो सब लोगों ने कहा कि अब न जाने क्या कहेंगे, आगे उनके मुख से क्या निकलता है ये देखना है। उन्होंने भरत से कहा, बेटे भरत, तुमने राम की भावना को समझने की चेष्टा की या अपनी ममता में बहकर अपनी तरफ से ही विचार किया, उनके तरफ से विचार किया, या हमारा इष्ट देव क्या चाहता है? बस उनके चरणों में नतमस्तक गिर गए। बोले जी आप हमारे गुरु, मेरी आंखें खुद, अब तक मोह में मैं अंधा हो रहा था, प्रेम में पढ़कर अपनी भावना को ही राम पर थोप क्या देने के लिए आरोपित कर कि हमारी बात को मान लो, अयोध्या चलो, इसमें मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, वहां के सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक तो है, किंतु राम की भावना क्या है ये तो समझो, राम से पूछो, उनके चरणों में गिर करके, मैं आपका दास हूं, आप क्या चाहते हैं हमको खोल करके स्पष्ट करके बोलिए। देव कह आप गुरु हैं हमारी, आज आंखें खोल दी, अब तक मैं भ्रम में था, प्रेम का भी कोई कर्तव्य और रीति नहीं थे ये मुझे पता नहीं था, आज आपसे मिला। बस राम चरणों में गए, बोले भैया आज महाराज जनक ने हमारी आंखें खोल दी, आपकी क्या अभिलाषा है मुझे बतलाइए, मुझे क्या करना है या बतलाइए। नहीं है कि बात क्या करनी है, तुम्हारी जीत हो गई और हमने राज्य ले लिया, मैंने राज्य ले लिया, कोई चिंता नहीं, किंतु एक बात है, पिताजी का आदेश भी काफी विचार करो, उसका उल्लंघन हम ना करें, इसलिए तुम राजा नहीं मैं राजा हूं ये बात तो ठीक है, मेरे प्रतिनिधि बन करके पिता के आदेश के लिए तुम 14 वर्ष तक अयोध्या की देखभाल करा और प्रजाओं की करना, और मैं बहुत से जल्दी 14 वर्ष का वनवास बिता करके जल्दी से आ रहा, कोई चिंता मत करो। फिर भरत जी ने कहा कि ठीक है मैं आपके इस आदेश को, इसमें आज यदि आप प्रसन्न हैं तो अब मैं अब हमारा मुंह दूर हो गया, एक बात कीजिए, मैं खड़ाऊ ले आऊ, आप पहन करके चलिए इस पर, और पादुका हमको दीजिए, ये पादुका आपका, मैं प्रतिदिन नहीं रहूंगा राज्य का प्रतिनिधि कौन होगा, ये आपकी पादुका सिंहासन पर रहेगी, मैं उसे आदेश लूंगा और जो कुछ होगा उनको निवेदन करूंगा, और उनके आदेश से मंत्री की भांति ये सब चलाऊंगा। किंतु एक बात याद रखेगा, 14 वर्ष बीतते ही यदि एक दिन की 1 घंटे की भी विलंब हो गई तो मुझे आग देखेगी आप नहीं देखेंगे, मतलब क्या आग में जल रही है, 1 सेकंड का भी इसके बाद में वशिष्ठ ने अयोध्यापुरी वालों सबको समझाया, माताओं को समझाया, फिर समझा करके उनके पादुका दिया, उन्होंने दिया और उस पर लेकर के जाने के लिए प्रस्तुत हुए। भरत जी बोले भैया आपके अभिषेक के लिए सारी सामग्रियां यहाँ पर आई है, मैं क्या करूं, अभिषेक की जो सामग्री आई आपके अभिषेक के लिए, तो आप राज्य तो ले लिया तो अभिषेक तो नहीं लिया अभी, फिर इसके लिए क्या, उन्हें अत्रि ऋषि यहीं पर है उनसे पूछो जैसा आदेश थे वैसा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत विशाल कुआं है, उस कुएं में अभिषेक की सारी वस्तुएं डाल दो और जब राम लौटेंगे तो उसी जल से इनका अभिषेक करना, तब तक वहीं पर सुरक्षित रहे। आज भी वही चित्रकूट में वो कुआं भरत कुआं के नाम से विख्यात है, अभी भी वो कुआं है। उसी के जल से जब लौटे तो उसी के जल से भरत जी और सब चीज सामग्रियां लेकर के अभी आए, लौट आए और रामचंद्र जी ने देखा अब यहाँ रहना उचित नहीं है, भरत का दूत आता जाएगा, ऋषि लोग भी तंग आ जाएंगे और सब लोगों के बार बार आने से यहाँ की पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी, अब यहाँ रहना अच्छा है। इसलिए ऋषि मुनियों से आज्ञा लेकर के और तब वहां से दंडकारण्य के लिए उन्होंने यात्रा की। इधर भरत जी पहुंचे अयोध्या में, अयोध्या में नहीं लौटे, अयोध्या में लौट करके माताओं को प्रसन्न किया, आदेश लिया उनके चरण से, कहीं कहीं क्या नहीं, कैसे ही से अब माता का संबंध पुत्र का संबंध नहीं है। नंदीग्राम वहां से 1500 मील के अंतर में है, वहां एक पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी है और उसी जगह में उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई, जैसे राम पर्णकुटी में रहते थे और वहीं पर कुटी बना करके और वहीं पर रहने लगे। कैसे रहने लगे, जैसे राम वहां पर रह रहे हैं, फल मूल खा करके कंद खा करके ऐसे खा, जैसे रामचंद्र जी की जटा है ऐसे उन्होंने जटा रखे। वो सीता के साथ में राम है कि तो वो अपनी पत्नी के साथ, पत्नी आकर के बोली यदि राम अपनी भार्या को लेकर के रह सकते हैं तो उनका दास भी क्यों नहीं अपनी पत्नी को लेकर के रह सकता है, हम दोनों मिलकर के उनकी सेवा करें, मैं आपको सब प्रकार से सहायता करूं। ठीक है, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पति की सेवा माने क्या, उसके आज्ञा, तुम यदि चले आओगे तो कौशल्या का धर्म कौन कराएगा, एक तो उनका पुत्र गया बन में, उनकी बहू गई और कोई है नहीं कि उनको समझाए, हम शत्रुघ्न है किंतु दिन रात तो साथ में नहीं रह सकते, इसलिए तुम निकट पर रहकर उनकी सारी सेवाएं खाना पीना सैया सब तुमको कर, सेवा का धन बड़ा कठोर होता है, इसलिए मैं इसमें प्रसन्न रहूंगा। वनवासिनी की भांति रह करके माता कौशल्या की तुम सेवा, अंत में वो कुछ बोल नहीं सकी, लौट गए। इसके बाद में उर्मिला जी को जानते हैं, लक्ष्मण जी की, उसका विरह कैसा होगा, उसी के लिए हमारे कौन है, कौन शरण, राम शरण, मैत्री शरण, गो बस उर्मिला और लक्ष्मण का चरित्र पर लिखा है। रामचरितमानस में सीता जी का चरित्र और उसमें उर्मिला कितना कठोर, कितना वैराग्य, कितना तत्पश्चात आई सभी लोग, कह कही अपने महल में गई, सभी अपने अपने महल में गए, कौशल्या भी गई और वो उजड़ा हुआ राजभवन, कहीं से रहा नहीं जाता, राजभवन है किंतु सो नहीं सकते, बिच्छू डंक मारते हैं, हम हमारा बेटा भी मां नहीं करता जिसके लिए इतना किया, और अनुताप हो रहा जी हमने कैसे क्यों कहा उस मंथरा की बात। दूसरी बात, राम ने उसी समय में जनक ने वही चित्रकूट पर वो समझाया था, जो पिताजी का तुम्हारे मामा का ये वचन था, मामा ने नाना का, यह हमारी बेटी, यह हमारी पौत्री, मामा ने कहा था कि हमारी बेटी के साथ में आपका आपकी शादी होगी तो इसका बेटा ही राज करेगा, जानते हैं तुम, भरत को कहा तो हमने मैंने तो नहीं किया, मैंने कभी नहीं सुना, तो ये बात है। महाराज दशरथ ने प्रतिज्ञा की और युद्ध क्षेत्र में देवता दानों में महाराज दशरथ ने उनको 2 वर दिए थे प्रसन्न होकर, और उससे यदि मांग लिया तो क्या हो गया, और पिता उसके लिए यदि प्राण भी छोड़ दिए अपने सत्य को बात करने के लिए, स्वर्ग लोग सिधारे इसके लिए चिंता, तो वही भरत जी जीने के प्रिय न राम गए जी तजे कोटि पर तैरी सम जग तक पर तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजे कंत प्रत बनितन भय जग मंत्र। जो राम का विरोधी है, जो राम का बेमुख है, जो कृष्ण का बेमुख है, गुरुमुख बेमुख है, ये भी एक ही तत्व है, उसका मुख हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, भक्ति नष्ट हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगा। भरत जी कहते हैं, भरत जी के लिए कह रहे हैं, जिनके प्रिय न राम बैठे तजिए कूठ बैरीशम, माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु को भी छोड़ देंगे। ऐसे गुरु को जो राम का भी मुख हो गया, गुरु का कर्तव्य है कि राम का सम्मुख सबको कराएगा, अपने आप सेवा करे, किंतु जो गुरु राम का ही विमुख हो गया, ऐसे गुरु की जरूरत क्या है, उसको भी छोड़ देने की बात। तेज पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई दशमुख को त्याग कर दिया, राम के समीप स्वयं चले आए। भरत महातारी, भरत जी ने अपनी मैया को, बलि गुरु, बलि महाराज ने अपने गुरु को, और गोपियों ने क्या किया, पतियों, इसमें जगत का मंगल हुआ। किसको कह रहे हैं, मीरा को। मीरा ने पूछा, सभी विरोधी हमारे हो रहे हैं और हमें भजन से चुप करना चाहते, हमारा कर्तव्य क्या है। उन्होंने कहा, यदि ऐसे हो, बस एक सेकंड की देरी नहीं हो, उनका पत्र पाते ही घर छोड़ दो, वृंदावन वृंदावन से बात। तो भरत जी अपने नंदीग्राम में देख रहे हैं, राज्य कार्य भी देख रहे हैं, सबका समाधान कर रहे हैं। एक दिन कैकई पालकी में सवार होकर अंग रक्षकों के साथ में नंदी गांव में आए, पालकी से उतरी और बेटा ध्यान मग्न होकर के चिंता कर रहा है, राम की चिंता कर रहा है। सामने खड़ा हूं है उसको रोज, जैसे हम ठाकुर जी के सालक राम की सेवा करते हैं ना, उससे प्रेम से आंसुओं से स्नान कराते हैं, खड़ा हूं प्रार्थना करते हैं, आदेश लेते हैं, ऐसे तन्मय थे। मैया कुछ देर तक खड़ी रही, इसके बाद में देखा ये तो एकदम ध्यान में, तो सामने गई, बैठ गई। बेटे, बेटा भरत, नंदो ये कैकई महाराज। उन्होंने कहा, महारानी जी आप कैसे आई? मैया ने कहा, बड़े कठोर बन गए, महारानी हमको आदेश देती तो मैं खुद ही आ जाता, खुद ही आपका काम करा दे, कोई काम है बतलाइए, आपका वो आदेश कहा। उन्होंने कहा, बेटे अब ये महल मुझे सांप और बिच्छू का डंक मारता है, उसे अच्छा यह है कि मर जाऊं, तो बस हमारे लिए यही आदेश दो कि नंदीग्राम में भी मेरे लिए एक फूस की कुटी बना दी जाए, मैं भी यही करूंगी तुम्हारे साथ। ये नहीं, जैसा तुमने काम किया है उसका महल में पक्षियों का डंक और सांपों का डंक तुम्हें करे और उसमें छटपटा करके रहो इतने दिन तक, यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है और कुछ नहीं, मैं मैया नहीं कर सकता, एक बार मैया कर दू नहीं कर, कैसा फल हो, भजन करना है तो ऐसी कठोर था, असंग में मत जाओ, कुसंग में मत जाओ, गुरु के जो उन्मुख हैं, अनुगत हैं, उनके अनुसार तब तक तुम्हारा भजन हो जाएगा। हाँ एक बात मैं कहना भूल गया, भरत जी तो राम की खड़ाम लेकर के लौटे और उनकी आंख खुल गई, क्या इष्ट देव का आदेश पालन करना ही, उनकी मनोभावना के अनुसार चलना ही हमारा कर्तव्य है सेवकों का। भरत जी इसके आदर्श है, ठीक है, किंतु मैं अपने व्यक्तिगत रूप में जब गोपियों का चरित्र देखता हूं और भरत जी का चरित्र देखता हूं, जमीन आसमान का अंतर दिखता है कि नहीं। गोपियां धूप चुट्टे काले लंपट ध्रिष्ट क्या नहीं करती, फर्ज कर सकता है ऐसा, करोड़ों जन्मों में नहीं कर सकता, प्रेम सीधा नहीं है, भरत जी का प्रेम था सीधा सपा और गोपियों का प्रेम कैसा था कुटिल, भरत जी के दिमाग में नहीं आ सकता था ये गोपियों का प्रेम कैसा ऊंचा है, उतनी गहराई देखते हाँ को गहराई को हमारे रूप गोस्वामी महाप्रभु जी की कृपा से कुछ माप सकता, दूसरा कोई नहीं। रामचरित्र का कोई भी जो पात्र है कोई भी उसको नहीं छू सकता ना उसको माप सकता है। इसलिए गोपियों का चरित्र भरत जी के लिए भी आघात, भरत जी का चरित्र ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षियों के लिए आघात है और गोपियों का चरित्र गोपियों का प्रेम भरत जी के लिए भी आघात समुद्र है। इसको समझो, तुम लोगों का सौभाग्य है जो महाप्रभु जी ने चीज दिया है, इसके लिए अपना कुर्बानी भी कर सकते हैं। कितनी बड़ी चीज के लिए हम आए हैं तुम लोग नहीं कल्पना कर सकते, हम लोग कुछ कुछ कल्पना करते हैं, कितनी बड़ी चीज है अद्भुत गोपियों का प्रेम, गोतों भविष्य भगवान उसके वशीभूत होकर के क्या करते हैं, राम वशीभूत होकर के भरत जी का चरण धोया न क्या किया प्रेम से, किंतु गोपियों का चरण कृष्ण धो गए अपने सिर पर रखते अपने हृदय पर रखते, क्या है ना श्रीमद् भागवत में वंदे नंद परे स्त्री नाम का पहला श्लोक और पहले का जा वही स्त्री आज अजात भी आत्त कामई योगेश्वर प्रीति राष्ट्रगोष्ठ्यम तब भगवत कृष्ण चरणारविंदम नष्टम धनेश परिवर्तन। ये भक्ति का कभी सौभाग्य हो ब्रह्मा इत्यादि जी शंकर भरत सभी जिनका चिंतन करते हैं जिनके चरणों का और वो चरण गोपियां हृदय पर धारण करके वो अफसोस करती हैं कितना सुकोमल चरण, और उस चरण को फिर गोपियां क्या करती हैं देखो उनकी आघात नहीं होता है। हम अब अधिक वर्णन करेंगे तो उधर से उधर चले जाएंगे, इसलिए यही तो समाप्त करके लौटता हूं। तो अब नंदीगर्भ में वो पहुंची और भरत जी ने उनके साथ में जैसा व्यवहार किया हुआ शास्त्रों को रोती कलपती हुई वो लौटी, एक कठोर हृदय को भी दया संचरित हुई द्रवित हो गया, फर्क नहीं हुआ किस लिए राम विमुखता के लिए, और वो कह रही है कि मैं जो हो गया भूल गया, हमें हमारा अपराध क्षमा करो, मैं अपना वचन लेती हूँ, राम से भी कहा मैं अपना वचन लेती हूँ, और पिताजी है पिताजी के सामने आपका दोनों का आदेश था इसलिए मान रहा, अब अकेले आपका आदेश नहीं पिताजी के साथ भी इसलिए पिताजी का हमको आदेश आदि मांगू नहीं मांग। अब वही रामचंद्र 14 वर्ष वनवास के बाद राम लक्ष्मण सीता हनुमान अपने कमांडरों के साथ में सुग्रीव विभीषण के साथ में पुष्प विमान से लौटे, लौटने पर उनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद में अपने भाइयों के साथ बैठे, तो जबकि राज्याभिषेक हुआ तो सबसे पहले कहां गए कैकेयी के घर में उसको प्रणाम करने, राज्याभिषेक पहले कौशल्या मैया कह नहीं गए और कहीं नहीं गए, गुरु के पास भी नहीं गए, गुरु ने तो राज्याभिषेक किया ही इसलिए अपनी मैया कैकेयी के पास भी गए, बड़ी प्रसन्न हुई आंख से आंसू झड़ने लगे, उसने कहा बेटा एक बात मैं सुखी हूं तो एक बात है भरत ने हमको कभी मैया नहीं कहा तो मेरा जीवन बेकार था, तुम उसे कह दोगे तो तुम्हारी आदेश को नहीं टालेगा ठीक है। फिर राज्यसभा में गए भाइयों को बुलाया भरत को भी बुलाया, जबकि और जगहों में गए तो भरत उनके साथ साथ में गया, जब मैया के रंग राजमहल में गया तो भरत नहीं गया लौट गया पीछे से, फिर रामचंद्र जी लौट करके आए और उनको बुलाया बैठाया बातचीत, देखो तुमसे मैं कुछ मांगना आज तक तो जीवन में मांगा नहीं और तुम हमारे बड़े प्रिय हो, हमारे आदेश को टालते नहीं हो, तो मैं तुमसे कुछ प्रार्थना करता, कुछ अनुरोध करना है, उनको देना पड़ेगा। बोले आज तक तो मांगा नहीं थे, ये क्यों मांग रहे हैं? उन्होंने कहा राज रानी कैकेयी को माता कहने के अतिरिक्त और जो आप आदेश देंगे वो पालूंगा। रामचंद्र जी ने कहा तुमने कहा था हमसे चित्रकूट में हमारे आंखें खुल गई, तो तुम्हारे आंखें खुल करके फिर बंद हो गई। अब तो तुम्हारा यदि इष्ट देव तो हमारी बात माननी होगी कि नहीं? काल हो गए, भरत जी को अपने हाथों से ले गए, कैकेयी के चरणों से गिरा दिया, कहा जी कहूं मैया। इतना हृदय दाव, तो ये राम रामचरितमानस है प्रेम की सीमा, बात ठीक है, बड़ी हृदय द्रावक। इससे भी और भी हृदय द्रावक सीता जी का पताल प्रवेश इत्यादि होगा उसमें, किंतु आज हम यही कथा का विश्राम देते हैं, और क्योंकि कल हमको जाना है, यदि फिर कभी रामनवमी आएगी और बाकी रहेगा तो उनका अवशेष चरित्र वर्णन करेंगे। अरे जानकी जी आप जानकी जी हैं ना? तो आज यही तक रहे। अरे वो आया है नन्नू, नन्नू कहाँ है? अरे तो तुम एक राम काव्य खोलो उसको, क्या अभी ट्रांसलेशन करते तो 8-9 बज जाए। हेलो जल्दी बोलो। नहीं काज आंखों का कुछ सूखेगा नहीं, धीरे लग
जाएगा। Mention one thing has been ordered by our Pujipad Ananya Maharaj also. When King Janak was appointed as judge at that time, Ram said that I will accept your order because you are my guru. Gurudev was emphasizing that this is duty of a disciple to accept the judgment, order and instruction of his guru exclusively without any
embassy.
American embassy
appointment.
We are going
without putting any if.
We are going tonight.
I'm
coming tomorrow.
No, why? Whatever
he is sick, Marah Marah.
Order,
and he needs help. Tell me luggages, what to pack, what not to pack. Otherwise, I stay there, but better I come back because so many things.
The whole thing is that Bharat said, Raja Janak gave decision. What was the decision of King Janak? He said, love of Bharat is without any boundary, what you call limitless love. He is having so much love